Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
अब मन में ही घूमने लगे तो कितने भागों में विभक्त हो गए, अनंत मन के संकल्प विकल्प अनंत। फिर वहां से आगे चले, इंद्रियों में आए, पांच प्रमुख हैं, कर्म इंद्रियों में भी आ गए। और क्या आप समझते हो कि ये दसी जगह प्रकाश है, आपके शरीर में ये छेद कितने पोर्स इनकी शायद वैज्ञानिक तो कहते हैं हमने गिनती कर ली, क्योंकि वो अनंत को मानने को तैयार ही नहीं है। अनंत को मानेंगे तो परमात्मा को मानना पड़ेगा, फिर अपने अज्ञान को मानना पड़ेगा। तो कहते नहीं, सब चीज फाइनाइट है, अनंत कुछ नहीं। यह आकाश कहां तक है? बोले ये भी फाइनाइट है, दी थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये निकाल ली उन्होंने। बोले जब तक हम वहां पता लगाने पहुंचेंगे वो और आगे बढ़ जाएगा। अरे तो इसी को तो अनंत बोलते हैं मगर वो अनंत नहीं कहेंगे। तो एक एक पोर में से ये प्रकाश जो है आत्मा का निकल रहा है, दस इंद्रियों में से मुख्य रूप से है। फिर और आगे चले तो ये जो वायु के कण हैं इनको प्रकाशित करता है। फिर और आगे चले तो जो वस्तु सामने रखी है उसको प्रकाशित करता है। तो इन्हीं सबको बोलते हैं प्रज्ञान। प्रज्ञान माने ज्ञान की किरणें। ये ज्ञान अब सुषुप्ति में क्या होता है, जागृत और स्वप्न में तो ये प्रज्ञान विविध रूपों में प्रकट होता रहता है। सुषुप्ति में क्या होता है कि प्रज्ञान घन, घन माने ठोस। जयदयाल गोविंदकार जी महाराज कहते थे घन सच्चिदानंद घन मारवाड़ी मिश्रित बोलते थे ना, घन जिसमें सुई की नोक भी ना घुस सके उसको बोलते हैं। वैसे संसार में ऐसा कोई गण नहीं है, क्योंकि आकाश की व्याप्ति सर्वत्र है, और जहां आकाश की व्याप्ति होगी वहां सुई की नोक तो घुस ही जाएगी, साधारण सुई की नहीं घुसेगी, विशेष सुई की घुस जाएगी, लेकिन घुसेगी जरूर, वरना बिखर नहीं सकती वस्तु। सब वस्तुएं बिखरती हैं, नष्ट होती हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो घन है, उसमें कुछ नहीं घुस सकता। ये माया छाया भी अध्यारोप के अंतर्गत ही सब मानी जाती है। तो सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन। अब जागृत की भी कोई किरणें नहीं दिख रही, स्वप्न की भी कोई किरणें नहीं दिख रही। एव आनंदमयो, अब वहां का अनुभव क्या है, क्यों सोना चाहते आप? तो बोले वहां ताजगी आ जाती है, थक जाता है ना मनुष्य। तो यही भाष्यकार लिखते हैं कि थकान काय से होती है, काम करने से नहीं थकता है मनुष्य। ये एक ही वस्तु को दो दो जगह बांटता रहता है, मैं जानने वाला ज्ञाता ये ज्ञेय, मैं करने वाला ये कर्म, मैं भोगने वाला ये भोग्य, ये जो डिवीजन करने की उसकी बुद्धि की कसरत है, ये कसरत जागृत में भी रहती है और स्वप्न में भी रहती है, तो इससे जो है माइंड थक जाता है। तो उस थकने को मिटाने के लिए जरूरी है कि ये व्यापार बंद किया जाए। तो इसलिए भगवान ने ये सुषुप्ति बना दी कि वैसे तो तुम बंद करोगे नहीं, तो जबरदस्ती बंद करा देते हैं थोड़ी देर। उतनी देर में जो है आदमी प्रफुल्लित हो जाता है। एक कोई सीरियल था शायद या क्या था, टीवी पे था, पहले देखते थे, अब तो बहुत दिन हो गए देखे हुए। तो उसमें था कि एक आदमी ने आराधना की, उसे बोले क्या चाहते हो, देवता ने कहा, बोले मैं धरती का मालिक होना चाहता हूं। बोले धरती का मालिक तो मैं भी नहीं हूं मैं तुझे क्या दे सकता हूं। तो ऐसा है कि तू सूरज निकलने के टाइम से चल और सूर्य छिपते तक चलता रहे, जितने हिस्से पर चल जाएगा उतने हिस्से का तू मालिक हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। अब वो चल दिया सुबह उठ करके, रात को नींद ही नहीं आई उसे, चल दिया नारायण। अब फिर ये तो चाल तो बहुत धीरी है, अभी तो एक घंटे में इतना ही चल पाया मैं, फिर और चाल तेज की, फिर और चाल तेज की, ज्यादा से ज्यादा जमीन के ऊपर चलना चाहता था ना। अब देखा उसने कि सूर्य तो छिपने पे आ रहा है, एक मिनट को भी सुस्ताया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, चलता ही रहा, चलता ही, वो लोभ के कारण। आखिर में जब उसने देखा कि सूर्य तो अब छिपने वाला है तो उसने दौड़ लगानी शुरू की। वो दौड़ लगाई तो बस हार्ट फेल हो गया सारी धरती का मालिक हो गया। तो भगवान ने कहा तू तो मानेगा नहीं, तो इसलिए जबरदस्ती उसने ये सुषुप्ति बना दी। थकान हो सो जाओ। तो वहां जो रिफ्रेशिंग फीलिंग होती है कि मैं तरोताजा हो गया, तो वहां कुछ सुख होता है क्या? वृत्ति तो है नहीं, मन बुद्धि कुछ काम करते नहीं, इंद्रिय कुछ काम करती नहीं, तो फिर सुख कैसे होता है? तो बोले बिना वृत्ति के जो सुख हो उसको बोलते हैं आनंद। रात हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा जब वृत्ति नहीं होगी तो आनंद का भी अनुभव नहीं हो सकता है। आनंद का अनुभव करना है, यही तो मूल अज्ञान है जो जिसका स्वरूप है नारायण। तो उस स्वरूप को आप अनुभव क्यों करना चाहते हो? इसलिए कि आप जानते नहीं हो कि मैं आनंद स्वरूप। सुषुप्ति में सता सौम्य तदा संपन्नम, ये श्रुति है कि सुषुप्ति में आदमी सत से एक हो जाता है। तो जब एक हो गया परमात्मा से तो आनंद रूप तो हो ही गया वो, लेकिन उसे ये ज्ञान तो नहीं होता है कि मैं उस समय आनंद परमात्मा से एक हो गया था, इसलिए आनंद मेरा ही था जो मुझे आनंद व सुख मालूम पड़ रहा था, ऐसा नहीं जानता। वो तो कहता मैं थक गया था इसलिए थकान मिटाने के लिए, वहां कोई लड्डू खाने का सुख थोड़ी है, वृत्ति नहीं है वहां, तो किस विषय से वो सुख लेगा? तो फिर जगता है तो फिर थकता है फिर सो जाता है, फिर थकता है फिर सो जाता है। अगर ये अनुभव हो जाए कि आत्मा का स्वरूप ही आनंद है तो वो जागृत में भी ज्यादा काम नहीं करेगा। काम करना कोई ये तो मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं है। शाह बन करके कोई नहीं रहना चाहता, मजदूर बन करके ही सब रहना चाहते। तो गीता जी का वो श्लोक बार बार बोल देते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। कोई भी आदमी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, प्रकृति उसको जबरदस्ती कर्म में लगा देती है। और 18वें अध्याय में भी एक श्लोक है, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। जो देहधारी है, देहव्रत है, जो देहधारी है वो कर्म का त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए जो कर्म के फल का त्याग करता है उसको ही त्यागी बोलते हैं। ये 18वें अध्याय का। अब इसमें शंकर भाष्य तो लोग पढ़ते ही नहीं है, कुछ अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, कुछ यथार्थ गीता पढ़ लेते हैं। यथार्थ गीता देखिए ना, इनके इस्कॉन वालों की। तो शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि अगर प्रकृति जबरदस्ती सबसे कर्म करा लेती है तो ये नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वित, इस श्लोक को कहां ले जाओगे? जो तत्वज्ञानी है वो तो ये स्वीकार ही नहीं करता है कि मैं आत्मा ब्रह्म कुछ करता हूं। जो सर्वव्यापक है वो कर ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, यहां ये अर्थ करना चाहिए कि जो तत्वज्ञानी नहीं है उसको प्रकृति जबरदस्ती कर्म में लगा देती है, क्योंकि वो तो अपने को कर्ता ही मानता है। और नहीं देहभ्रता शक्यम, इस श्लोक में जो देहभ्रत का अर्थ देहधारी किया है वो भी ठीक नहीं है। देहभ्रत का अर्थ है देहाभिमानी। अब ये शंकर भाष्य नारायण, अब आपकी जैसी इच्छा हो। आत्मा के बारे में यदि विचार करना हो तो शंकर भाष्य को स्वीकार करना पड़ेगा, और काम चलूंगा तो कुछ भी मान लो। तो प्रज्ञान घन एवो आनंदमयो, इस सुषुप्ति अवस्था में आनंद नहीं आनंदमयता रहती है। अब आप लोग तो सब वेदांत सुनते पढ़ते रहते हैं तो एक आनंदमय कोश भी होता है ना, और वहां ये लिखा हुआ है साफ कि आनंदमय कोश जो है वो सुषुप्ति में उसका अनुभव होता है। तो यहां आनंदमय का अर्थ लोग कहते हैं करते हैं आनंदमय कोश वाला, तो गलत तो वो भी नहीं है क्योंकि तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा है। लेकिन भाष्यकार ने जो यहां अर्थ किया है वो किया है आनंदमय का, आनंद आनंद प्राय। जैसे 24 घंटे में मान लो कोई 23 घंटे आनंद में रहे तो कहते हैं ये तो 24 घंटे आनंद में ही रहते। अरे वो एक घंटा क्या हुआ? अरे बोलो उसको छोड़ो, 23 घंटे के मुकाबले वो एक कुछ नहीं है, आनंद प्राय। तो वहां आनंद के मयट प्रत्यय जो है वो प्राचुर्यार्थक है, माने आनंद की प्रधानता रहती है। आनंद आत्मा का है ये तो ज्ञान वहां होता ही नहीं है और हो भी नहीं सकता है। इसीलिए वेदांत का ये पक्का घोष है कि समाधि में तत्व ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि समाधि और सुषुप्ति इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि सुषुप्ति तमोगुण की अवस्था से आती है और समाधि सत्वगुण की अवस्था से आती है। और जो स्वरूपानंद है वो तो स्वरूप का ठीक ठीक बोध होने पर होता है। जैसा हमने मान रखा है कि ये सुख का भोगता है, ये सुख का भोगता नहीं है, सुख स्वरूप है, तो भोगतापन इसमें से किसी तरह से निकल जाए तो आनंद ही आनंद है। सुख स्वरूप रघुवंश मन सभा काल बसतोर, विभीषण ने कहा ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। ये भगवान राम के लिए वशिष्ठ जी बोल रहे हैं नामकरण करते हुए। अरे कि जो आनंद सिंधु, आनंद का समुद्र है और सुख का ढेर है, अब दोनों में शब्द अंतर कर दिया, तो आनंद सिंधु तो ये निर्गुण ब्रह्म हो गया और सुख की राशि ये सगुण ब्रह्म हो गया ना। राशि माने तो ढेर होता है, तो कितना भी बड़ा ढेर हो, होगा तो सीमित ही, और सिंधु को जो है वो अनंत ही मानते हैं। सी करते त्रैलोक सुख, उसकी एक बूंद से सारा संसार तृप्त हो रहा है, तो उसका अनुभव कराने के लिए भगवान ने यह सुषुप्ति दी है कि देखो यहां तुम्हें जागृत अवस्था का भी कोई सुख नहीं है, स्वप्न अवस्था का भी सुख नहीं है, लेकिन सुख में तो रहते हो। अब भाष्यकार लिखते हैं कि आत्मा का आनंद नहीं है क्योंकि ये आत्यंतिक नहीं है, सिर्फ सुषुप्ति में अनुभव होता है। जब सुषुप्ति टूट जाती है तो फिर वही जागृत में रोना धोना सब दुख की बातें आ जाती है। अच्छा जी, अब वहां उस आनंद का भोग करने वाला कौन है सुषुप्ति में? अरे जो सो रहा है वही भोग करने वाला है। तो बोले भोग करने की तो सामग्री उसके पास है ही नहीं, वहां वृत्ति नहीं है तो कैसे भोग करता है? तो अब ये जरा सूक्ष्म विचार है। जैसे हम ये पुस्तक देख रहे हैं, क्या बिना आंख के देख सकते हैं? माने किसी भी ज्ञान इंद्रिय के बिना, अंधे छू के मालूम कर लेते हैं कि भाई ये फिर भी वहां शब्द की तो जरूरत पड़ती है, छू के यही तो देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज है। फिर कोई कहेगा कि ये किताब है तो उसको वो समझ जाएगा कि ऐसे ऐसे स्पर्श का नाम किताब है, कोरिलेट कर लेते हैं शब्द के साथ उसको। लेकिन समझने के लिए बिना आंख के रूप नहीं देख सकते, बिना कान के शब्द नहीं सुन सकते, बिना जीभ के रस नहीं दे सकते, बिना त्वचा के स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते, और बिना नाक के गंध का स्पर्श नहीं अनुभव नहीं कर सकते। तो ये बिना ज्ञान इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी का ज्ञान नहीं होता है, इसको बोलते हैं वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान तो जागृत में ये वृत्ति ज्ञान रहता है। अच्छा, सपने में तो ये सब आंख भी बंद हो जाती हैं, सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं, हृदय ओढ़ कर लोग तो मुंह ढक के भी सोते हैं तो त्वक इंद्रिय भी आपकी समाप्त हो गई, ज्यादातर यही खुली रहती है त्वक इंद्रिय, तो ये भी मान लो रजाई ओढ़कर मुंह ढक के सो गए तो ये भी गया, बाकी सारी इंद्रियां तो अपने आप ही बंद हो जाती हैं। फिर वहां स्वप्न के भोग आप किस वृत्ति से करते हो? तो इंद्रिय वृत्ति से जागृत अवस्था में भोग होता है और अंतःकरण की वृत्ति से स्वप्न अवस्था में भोग होता है। दो वृत्तियां हो गई, इंद्रिय वृत्ति और अंतःकरण की वृत्ति। अब सुषुप्ति में दोनों ही नहीं है, न इंद्रिय वृत्ति है न अंतःकरण की वृत्ति है, तो इसको वेदांत में प्रक्रिया ग्रंथों में अविद्या वृत्ति बोलते हैं। अविद्या वृत्ति का मतलब है कि वस्तु का अनुभव तो हो रहा है लेकिन वहां अनुभविता और अनुभाव्य माने अनुभव करने वाला और जिस चीज का अनुभव हो रहा है उनका भेद वहां है नहीं, क्योंकि वृत्ति नहीं है। फिर भी सुबह उठकर पट्टा ये नहीं कहता है कि मैं आत्मस्वरूप हो गया था, फिर वहां भी भेद की कल्पना कर लेता, अरे वो तो मैं थक गया था इसलिए ज्यादा अच्छी नींद आई। थकने के कारण आपका जो अंतःकरण था वो ज्यादा सो गया, आपकी इंद्रियां जो थी वो अंतःकरण में लीन हो गई। अब वहां आत्मा ही आत्मा शेष था लेकिन आप मानते नहीं हो इसको, तो कुछ ना कुछ लगा लेते हो, इस वजह से हमको अनुभव हुआ। ये अविद्या वृत्ति कहलाती है। अच्छा, ईश्वर को देखा है क्या आपने? शास्त्र शब्द प्रमाण के आधार पर ईश्वर को मानते हैं, अनुमान से उसकी सिद्धि करते हैं, शब्द प्रमाण के द्वारा माने शास्त्र के द्वारा उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं और हूं और वो और है, ये कैसे आप स्वीकार करते हो? बोले ये भी शब्द प्रमाण के द्वारा स्वीकार करते हैं। तो शब्द में तो भेद का भी वर्णन है और अभेद का भी वर्णन है, तो अभेद को क्यों नहीं स्वीकार करते? बोले वो हमको सूट नहीं करता। तो सूट करने वाली बात थोड़ी है भाई, जब आप सत्य का विचार करोगे तो जैसी है वस्तु। इसीलिए कहते हैं कि आपको उपासना करनी हो तो ईश्वर में और अपने में भेद मान करके जो चाहे जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन यदि आपको सत्य का साक्षात्कार करना है तो अंत में यही आपको अनुभव होगा कि एक तत्व के अलावा संसार में और कुछ नहीं है। जीव और ब्रह्म ये सिर्फ दो नाम हैं, वस्तु एक है। अच्छा देखो, शब्द की महिमा बताता हूं। ये तो जीव शब्द तो चलो शास्त्रीय है, आत्मा समझ लो, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। मैं आत्मा हूं कहते ही आप शरीर में घुस गए। मैंने शरीर में कोई आत्मा नाम की चीज है वो मैं हूं, और मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म कहते ही आप शरीर से बाहर निकल गए ना। ब्रह्म माने जो सर्वत्र व्याप्त है, ईश्वर माने जो सबका नियंता है, जो सबका कारण है। ये शब्दों की महिमा है। तो जब हम एकत्व का विचार करेंगे तो इनके जो रूढ़ अर्थ हैं प्रचलित उनको नंबर दो पे रखेंगे, और जो शास्त्रीय अर्थ हैं एकता के बोधक उनको नंबर एक पे रखकर विचार करते हैं, तो बोले बस झट से अनुभव हो जाता है। अनुभव में देर नहीं है क्योंकि वस्तु एक ही है। ये दुराग्रह जो है अपने मन के ये नहीं छूटते। तो ये आनंद का भोग होता है वहां अविद्या वृत्ति से। मैंने बात तो इतनी समझानी थी, आनंद भोग आनंद का भोगता है। इसीलिए कहते हैं कि यहां आत्मा तो है सुषुप्ति अवस्था में लेकिन अज्ञान से लिपटा हुआ है, अविद्या वृत्ति के द्वारा आनंद का भोग। चेतो मुखः, इसका मुख जो है माने भोग का जो साधन है वो क्या है कि चेत, चित्त। चित्त चेत, शुद्ध चेत चैतन्य नहीं, जो चैतन्य है जिस चैतन्य जो जिस रूप से ये चैतन्य शरीर में अंतःकरण में सब में व्याप्त है वो है चेतस चित्त, उसके बीच रह जाता है। अगर आप ये नहीं मानोगे कि सुषुप्ति में सबका बीज रह जाता है तो स्वामी महेशानंद जी महाराज कहते हैं कि पहले अपनी अर्थी बनवा लो। क्योंकि सुषुप्ति में गए तो फिर लौटोगे नहीं। ना, ना, ना। राम राम सत्य हो जाएगी। लेकिन ये प्रारब्ध जो है इसके कारण सारे बीज इसमें सुरक्षित रहते हैं। 100 बरस की उम्र लेके आए हो तो 100 बरस तक सब सुरक्षित रहेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। कोई डॉक्टर किसी को बचा नहीं सकता है। बचा सकता होता तो अपने को ही बचा लेता वो। इसका नाम प्राज्ञ है। ये तृतीय पाद है। शेष चर्चा फिर। हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम् शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।